दिशांक के आ जाने के बाद भी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हुई थी। अभी भी मालविका बीच में टांग अड़ा रही थी। आयशा वहां माहौल को और गर्म करने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने इशारे से मालविका को दिशांक से इशिका के बदले माफ़ी मांगने को कहा और वो दिशांक के पैरों में गिर चुकी थी। इन सब में इशिका काफ़ी परेशान हो चुकी थी। आखिर में इशिका खड़ी हुई और मालविका से बोली, आपने कहा आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। हर कोई इशिका की तरफ देख रहा था। उसने कुछ पल रुककर कहा, अगर आप सबके सामने इस तरह मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना और मेरी रेप्यूटेशन डाउन करना बंद कर देंगी ना, उस दिन सच में मैं आपकी थैंकफुल रहूंगी। उसकी बात सुनकर मालविका थोड़ी चौंकी और फिर रोने का दिखावा करते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं ये काम सफाई से नहीं कर पाई। मेरी वजह से आज तुम्हारी इज्जत पर बात आ गई है। इशिका की बात सुनकर नक्श बुरी तरह से चिढ़ गया था। वो बोला, इशिका तुम कितनी ज़िद्दी हो, अभी भी अपनी गलती मानने के बजाय अपनी मॉम पर इल्ज़ाम डाल रखी हो। ओशन यूनिवर्सिटी के डीन ने सख्ती से कहा, इशिका अपनी ज़ुबान पर लगाम दो, यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ दे रही है और तुम हो कि उन पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो कि उन्होंने तुम्हारी इज्जत ख़राब की है। उसके बाद डीन ने दिशांक की तरफ देखकर कहा, देखा मिस्टर राठौर, थोड़ी देर पहले आपने हम पर इल्ज़ाम लगाया था कि हम हमारी स्टूडेंट का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लड़की ऐसी ही है, यहाँ अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही है जबकि खुद ना तो टाइम से असाइनमेंट जमा करवाती है और ना ही कॉलेज अटेंड करने आती है। काफ़ी बार इसे हॉस्टल से भी गायब देखा गया है, पता नहीं कहाँ किसके साथ जाती है। अब आप बताइए, ऐसे स्टूडेंट को हम रख भी कैसे सकते हैं। दिशांक ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और फिर आयशा की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, क्या सच में ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर मर्चेंट ने कभी आयशा सिंघानिया को कोई प्रोजेक्ट भेजा ही नहीं, तो फिर मिस सिंघानिया की सो कॉल्ड इनोसेंट मॉम उसे उनके लैपटॉप से कैसे चुरा सकती हैं? दिशांक की बात सुनकर सब हैरान रह गए। अब इशिका के बजाय आयशा पर सवाल उठने लगे और सब उसकी तरफ देख रहे थे। नक्श ने आयशा की तरफ देखकर सर हिलाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है आयशा? आयशा ने खुद को सही साबित करने के लिए कहा, डॉक्टर मर्चेंट सिंघानियास के लिए अलग से काम करते हैं, ये उनके कंपनी का मैटर नहीं है, उन्होंने पर्सनली मुझे सब भेजा था, इस वजह से आपको नहीं पता है। उसकी बात सुनकर नक्श ने राहत की सांस ली, वरना एक पल के लिए तो उसे लगा कि आयशा उसे बेवकूफ़ बना रही है। आयशा को डर लगने लगा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने दिशांक से सीधा सीधा कहा, मिस्टर राठौर, आपको नहीं लगता कि इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए? आपको घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी चाहिए और सबको सीधे सीधे बताना चाहिए। उसने नक्श की तरफ देखकर कहा, इन सब में कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस मैटर को यहीं पर छोड़ देना चाहिए? वैसे भी मिस्टर राठौर बाहरी आदमी है, उन्हें राजवंश एम्पायर से जुड़ी इस मीटिंग में होने का कोई हक नहीं है। आयशा की बातें नक्श को भड़का रही थीं। उसने दिशांक से कहा, मिस्टर राठौर, ये राजवंश एम्पायर का मामला है, आई होप आप इसमें किसी दूसरे मैटर को बीच में नहीं लेकर आएंगे। सिंघानिया फैमिली और डॉक्टर मर्चेंट के बीच जो भी कमिटमेंट है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नक्श दिशांक से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर मर्चेंट का मैनेजर था, इस वजह से वो उनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, वरना उसकी पोजिशन भी कुछ कम नहीं थी। इतना सब सुनने के बाद भी दिशांक ने कहा, लेकिन मैं इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हूँ कि डॉक्टर मर्चेंट ने मिस आयशा सिंघानिया को किसी तरह का ईमेल नहीं भेजा। अच्छा, तो डॉक्टर मर्चेंट ने नहीं भेजा तो आयशा को प्रोजेक्ट सॉल्व करके कैसे मिला? नक्श ने हंसते हुए कहा। वहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें ये प्रोजेक्ट आखिर मिल कहाँ से? दिशांक ने कंधे उचका कर कहा। मतलब क्या है आपके कहने का? नक्श ने सिर हिलाकर बोला। दिशांक ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, इसमें इतना समझने जैसा क्या है? इस औरत से ही पूछिए ना, जिसने आयशा के लैपटॉप से कुछ कॉपी किया है। जरूरी थोड़ी ना है कि कुछ सामान कॉपी हुआ है, हो सकता है कि उसमें प्रोजेक्ट डाला गया हो। अब तक सब यही समझ रहे थे कि मालविका ने आयशा से प्रोजेक्ट चुराया है, लेकिन दिशांक के समझाने पर उनका ध्यान इस तरफ गया कि हो सकता है कि मालविका ने इशिका से प्रोजेक्ट चुराकर आयशा के लैपटॉप में डाला हो। नक्श सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला, यहाँ कोई मजाक चल रहा है मिस्टर राठौर? आप ये कहना चाहते हैं कि मालविका आंटी ने इशिका के लैपटॉप से प्रोजेक्ट को चुराया और फिर आयशा को दे दिया? हाँ, तो इसमें हंसने जैसा क्या है? दिशांक सीरियस चेहरे के साथ बोला। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश, आपको क्या लगता है, क्या जो मैंने कहा वो गलत है? हर कोई अभिमन्यु की तरफ देखने लगा, आखिर उसकी राय मायने रखती थी। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचकर फिर सख्त आवाज में कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। नक्श अभिमन्यु पर गुस्सा नहीं कर सकता था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपना गुस्सा दिशांक पर उतारते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट डॉक्टर मर्चेंट के बजाय इशिका ने पूरा किया था? नहीं, प्रोजेक्ट तो डॉक्टर मर्चेंट ने ही पूरा किया है, लेकिन मिस सिंघानिया की गलत नहीं है, दिशांक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। दिशांक की बातें नक्श को उलझन में डाल रही थीं। आयशा ने बीच में बोलते हुए कहा, मिस्टर राठौर, कहीं आप ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि इशिका और डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट कोइंसिडेंटली एक जैसा हो गया? नक्श भी आयशा की बात से सहमत था। उसने कहा, आपकी बातें हम सबको कन्फ्यूज कर रहे हैं, यहाँ सबको दिख रहा है आप डॉक्टर मर्चेंट के काम का क्रेडिट इशिका को दे रहे हैं।
जिस तरह से दिशांक यशिका को सपोर्ट कर रहा था, अचानक अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। उसे शक तो था ही कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, लेकिन दिशांक की बातों ने उसके शक को कन्फर्म कर दिया था। तभी शायद यशिका इतनी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसे दिशांक पर यकीन था कि वो आकर उसे बचा लेगा। अभिमन्यु गुस्से में यशिका की तरफ देख रहा था, तभी नक्श बोला, मैं नहीं मानता कि यशिका इतनी इंटेलिजेंट है कि कुछ प्रोजेक्ट अच्छे से हैंडल कर सकती है। हालांकि उसे यहाँ जॉब अभिमन्यु चाचू की वजह से मिली थी। डॉक्टर मर्चेंट को मैंने यहाँ काम करने के लिए मनाया था। मैं मान ही नहीं सकता कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट डॉक्टर मर्चेंट के लेवल जितना काम कर सकती है। अब हर कोई अभिमन्यु की तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा था, क्योंकि वही यशिका को लेकर आया था। वहीं दिशांक यशिका को बचाने के चक्कर में अपने मेन मुद्दे से भटक गया था कि उसे यशिका की आइडेंटिटी रिवील करनी थी। हर कोई यही समझ रहा था कि यशिका ने कोई काम नहीं किया, बल्कि वो डॉक्टर मर्चेंट के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। अचानक पृथ्वी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि एक एम्प्लॉई कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर चुका था कि राजवंश एम्पायर की एक इंटर्न ने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुरा लिया है और उस इंटर्न को अभिमन्यु राजवंश ने हायर किया था। हर कोई अभिमन्यु और यशिका के रिश्ते पर सवाल उठा रहा था। पृथ्वी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने मोबाइल अभिमन्यु की तरफ किया, लेकिन अभिमन्यु ने तो मोबाइल की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें यशिका पर जमी हुई थी। मीटिंग रूम में भी लगातार यशिका पर सवाल उठाए जा रहे थे। आयशा मंजुमन खुश हो रही थी क्योंकि यशिका पूरी तरह फंस चुकी थी। वहां लगभग दो घंटे की लंबी बहस के बाद नक्श ने नतीजे पर पहुंचते हुए दिशांक से कहा, मिस्टर राठौर, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट के मैनेजर होने के बावजूद आप उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनके किए हुए काम का क्रेडिट एक ऐसी लड़की को दे रहे हैं जिसने उनका प्रोजेक्ट चुराया है। डॉक्टर मर्चेंट को इस बारे में पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे।
दिशांक पर इतने आरोप लगने के बाद भी वो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर बोला, क्यों ना डॉक्टर मर्चेंट से ही इस बारे में पूछ लिया जाए। अचानक दिशांक अपनी जगह से खड़ा हुआ और यशिका के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने अपने गर्दन झुकाकर अभिवादन किया और बोला, डॉक्टर मर्चेंट, बताइए कि एज अ मैनेजर मैं आपके लिए कितना लॉयल हूँ। अचानक वहाँ पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। हर कोई हैरानी से यशिका और दिशांक की तरफ देख रहा था। उनके दिमाग जाम हो गए थे कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया। दिशांक ने यशिका को डॉक्टर मर्चेंट क्यों कहा? क्या सच में यशिका डॉक्टर मर्चेंट हो सकती है? ये सब नक्श के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। वो दिशांक पर चिल्लाकर बोला, मिस्टर दिशांक राठौर, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है? डॉक्टर मर्चेंट कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो आप हर किसी को खड़ा होकर डॉक्टर मर्चेंट बताने लगो। मुझे लगा भी था कि तुम जैसे लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। खैर, बिना सबूत के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, दिशांक ने आइज रोल करके कहा और फिर अपने बैग से एक पेटेंट किया हुआ सर्टिफिकेट निकला। उसने उसे ऊपर करके उन सबको दिखाया। पेटेंट के ऊपर नकली सर्टिफिकेट लगाना पॉसिबल नहीं था। वहां सीधे सीधे यशिका मर्चेंट सिंघानिया लिखा हुआ था। इसका मतलब दिशांक सही कह रहा था। उसे देखने के बाद नक्श की आंखें फैल गई थीं। वो तो झटका खाकर घिरने तक को तैयार हो गया था, लेकिन उसने टेबल को पकड़ लिया था। उसने यशिका की तरफ देखा मानो कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। शुरुआत में नक्श ने यशिका को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक नाजायज औलाद थी, और आयशा को इसलिए चुना ताकि उसके दम पर वो डॉक्टर मर्चेंट तक पहुंच सके और खुद की पोजीशन ऊंची कर सके। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बेवकूफ बना दिया। नक्श ने आयशा को गुस्से से देखा और कहा, ये सब क्या चल रहा है? आयशा डर के मारे कांप रही थी। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। उसने सबसे कहा कि डॉक्टर मर्चेंट ने उसे प्रोजेक्ट भेज दिया है और आयशा ने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया था। मालविका भी उसका साथ देने के लिए आगे आ गई थी। सबने मान भी लिया था कि यशिका ने ही प्रोजेक्ट को चुराया है। उसने पूरा प्लान बना रखा था कि भले ही दिशांक राठौर यशिका के पक्ष में गवाही देने के लिए आए, लेकिन फिर भी लोग उन्हें ही गलत समझेंगे। पर वो कहाँ जानती थी कि यशिका ही डॉक्टर मर्चेंट निकलेगी। आयशा ने खुद को संभाला और नक्श को समझाते हुए बोली, नक्श प्लीज प्लीज नक्श, मेरी बात मेरी बात। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या कहे जिससे नक्श का गुस्सा शांत हो जाए। मालविका गुस्से से जमीन पर से उठी और यशिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, बदतमीज लड़की, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे तो कभी ठीक से नंबर भी नहीं आए, फिर तुम डॉक्टर मर्चेंट कैसे हो सकती हो? ये लड़का तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा है। बताओ इन सबको कि तुमने ही अपनी बहन का प्रोजेक्ट चुराया है। मालविका की बातें सुनकर सब हैरान रह गए कि अचानक माँ बेटी का प्यार कहाँ चला गया। थोड़ी देर पहले वो यशिका का इल्ज़ाम अपने सिर लेने के लिए तैयार थी, तो अब जब यशिका की सच्चाई सामने आ गई तो वो उसे ही गलत ठहराने लगी। मालविका गुस्से में यशिका को थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन यशिका ने उसका हाथ पकड़ा और सख्ती से कहा, क्या आप भूल गईं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आते थे? उसकी बात सुनकर मालविका चौंक गई। आज यशिका को बोलने का मौका मिला था तो वो चुप नहीं रहने वाली थी। यशिका ने आगे कहा, आपने मुझे मजबूर किया था कि मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकती। मैं हमेशा से बचपन में क्लास में नंबर वन पर रहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया कि अगर मैं आयशा से अच्छे नंबर लेकर आई तो आप मुझे बेच देगी।
इशिका ने कुछ पल नीचे देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आप दूसरों को अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते हो। मुझे कम नंबर लाने पड़ते थे ताकि ठीक से आप मुझे खाना दो। इशिका ये सब किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे मालविका एक आदर्श माँ होने का दिखावा कर रही थी, ऐसे में उसकी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी था। हर कोई इशिका की बात सुनकर हैरान रह गया। वो मालविका की तरफ देख रहे थे जो थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब उसकी सच्चाई सामने आते ही सब उसे नफरत से देखने लगे, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हेड। अभिमन्यु की गुस्से में मुठ्ठियाँ बंद गई थी। उसने इशिका की तरफ देखा। हालांकि इशिका अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सब कुछ बता रही थी, लेकिन उसके शब्दों से साफ जाहिर था कि उसने कितना कुछ झेला था। अचानक अभिमन्यु को याद आया कि जब उसने पृथ्वी को इशिका के बारे में पता लगाने को कहा था, तब उसे पता चला था कि बहुत कम उम्र में इशिका ने घर छोड़ दिया था। ओशन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता था जिनके अच्छे नंबर आते थे, लेकिन आयशा की वजह से वो मार्क्स भी अच्छे नहीं ला सकती थी। ऐसे में इशिका ने कॉलेज की महंगी फीस भरने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े काम किए। मालविका इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। वो इशिका पर चिल्लाकर बोली, तुम एक चालबाज लड़की हो, इसीलिए तुमने घर छोड़ा। हम सबको दिखाती रही कि तुम्हारे नंबर कम बन रहे हैं, तुमने नकली मार्कशीट बनवाई ना, और ये पहचान भी नकली ही होगी। तुमने अपनी बहन को फंसाने के लिए ये सब किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम एक घटिया लड़की हो, एक नाजायज। मालविका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई उस पर जोर से चिल्लाकर बोला, बंद करो अपनी बकवास। वो अभिमन्यु था जिसकी निगाहें इस वक्त इतनी सर्द थी कि कोई देखकर ही घबरा जाए। मालविका कुछ कदम लड़खड़ा गई थी और इशिका से दूर खड़ी हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभिमन्यु गुस्से में मालविका का गला दबा देगा। चलो भाई, इशिका की सच्चाई तो सामने आ गई, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। वैसे हीरो ने एंट्री ले ली है तो सब अच्छा ही होगा। पढ़कर समीक्षा कर देना। अगले पार्ट पर मिलते हैं जो कि कल आएगा।